بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تاجکستان میں شنگھائی تعاون کی تنظیم کا سربراہی اجلاس. اس موضوع پر گفتگو کریں گے معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین، شنگھائی تعاون کی تنظیم کا سربراہ اجلاس جو کہ 14واں اجلاس تھا، کل تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں اپنے اختتام کو پہنچا. اس اجلاس میں رکن ملکوں کے سربراہوں اور اعلی حکام نے شرکت کی، اور جو ممالک کے مبصر ملک کا درجہ رکھتے ہیں ان کے بھی اعلی حکام اور سربراہوں نے اس میں حصہ لیا. روس اور چین کے صدور اور اسی طرح وسطی ایشیا کے ملکوں کے سربراہوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، جبکہ افغانستان کے صدر حامد کرزئی، ہندوستان کی وزیر خارجہ سشما سوراج اور پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز جیسے اعلی حکام نے بھی اس اجلاس میں حصہ لیا، جبکہ ترکی کو خصوصی مہمان کے حیثیت سے بلایا گیا تھا. اس کے علاوہ بھی مصر اور دیگر ملکوں کو بھی اس میں دعوت دی گئی تھی مہمان کے حیثیت سے. بہرحال شنگھائی تعاون کی جو تنظیم ہے اس کی علاقائی اعتبار سے اپنی خاص اہمیت ہے، اور جس میں چین اور روس جیسی دو بڑی طاقتیں رکن ملکوں کا درجہ رکھتی ہیں، اور یہ بانی ممالک شمار ہوتے ہیں، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان اور ساتھ ہی پاکستان اور افغانستان جیسے ملکوں کو اس تنظیم میں مبصر ملک کا درجہ حاصل ہے. تو ظاہر ہے کہ جب جغرافیائی اعتبار سے اس تنظیم پر نظر ڈالی جاتی ہے اور آبادی کے اعتبار سے اور جو اس میں پوٹینشیل پایا جاتا ہے اور جو توانائیاں پائی جاتی ہیں اس تنظیم کے رکن اور مبصر ملکوں میں، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر یہ ممالک رکن ممالک آپس میں جس مقصد کے لیے تنظیم قائم کی گئی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھرپور اور سنجیدہ تعاون کریں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مضبوط اقتصادی بلاک کے شکل میں معرض وجود میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے آ سکتی ہے. اگرچہ معرض وجود میں تو ہے لیکن عملی طور پر یہ اپنا لوہا منوا سکتی ہے. اور پھر جس طرح سے مغرب اور امریکہ آئے دن روس جیسی بڑی طاقت کو پابندیوں کا بہانہ بنا کر آنکھ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں مغربی طاقتیں، تو شاید ان میں پھر یہ جرأت نہ ہو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایک ایسے وقت جب روس کے صدر پوتین شنگھائی تعاون کے سربراہی اجلاس میں بحران یوکرین کے تعلق سے اپنے ملک کے موقف کی وضاحت کر رہے تھے اور عالمی رائے عامہ کے سامنے یوکرین کے بحران اور اس کے پس پردہ عوامل اور محرکات اور مضمرات کو بیان کر رہے تھے، اسی وقت امریکہ اور یورپی یونین نے روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک بار پھر نئی پابندیاں عائد کر دیں، جس پر روس کے صدر پوتین نے خود وہیں تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں اور آج روسی وزارت خارجہ نے سخت برہمی اور رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام مخاصمانہ اقدام ہے اور مغرب یا یورپی یونین کے رکن ملکوں نے جو نئی پابندیاں عائد کی ہیں تو ہم ان کے اقدامات کا ترکی بترکی اور منہ توڑ جواب دیں گے. اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے شنگھائی تعاون کی تنظیم کے سربراہ اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور انتہائی خطرناک لعنت کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ معاملہ، تو اس کے لیے سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. دہشت گردی اور پابندیوں کا ہتھ کنڈا ایک ایسا ہتھ کنڈا بن چکا ہے کہ جس سے ان ملکوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جو امریکہ اور مغربی ملکوں کے موقف اور ان کے نظریات یا ان کے ناجائز مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس طرح شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں دہشت گردی سے نمٹنے اور ساتھ ہی جو غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں مغرب اور امریکہ کی طرف سے دوسرے ملکوں پر، یہ معاملہ بھی سر فہرست رہا. ساتھ ہی رکن ملکوں کے سربراہوں نے کوشش کی کہ اس تنظیم کو پہلے سے بھی زیادہ فعال بنایا جائے، سرگرم بنایا جائے اور اس کی افادیت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا کہ اس تنظیم میں بیشتر رکن ملکوں को शामिल किया जाए, यानी बेशतर मुल्कों को रुकनियत दी जाए और ख़ास तौर पर उन मुल्कों को रुकनियत दी जाए जो इस वक्त मुबसर मुल्क का दर्जा रखते हैं। और इजलास से पहले ये बात कहीं ना कहीं से सुनाई दे रही थी कि बहुत जल्द इस्लामी जमहूरी ईरान को शंघाई ताउन तंजीम का रुकन मुल्क बना लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का जो मंशूर है उसमें जो चंद शरायत हैं उसको अगर देखा जाए और फिर इस बात पर गौर किया जाए कि ईरान को रुकन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस सिलसिले में ईरान की तवानाई, उसकी सलाहियत, उसकी इस्तेदाद और उसकी जोग्राफियाई हैसियत और सियासी जो उसकी पोजीशन है वो बखूबी समझ में आ सकती है। शंघाई का एक मंशूर यह है कि ऐसे मुल्क को शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बनाया जाएगा जिसके अंदर इस्तेदाद, तवानाई, इक्तिसादी पोटेंशियल, सियासी एतबार से उसकी बैन अलाक्वामी हैसियत हो और जो इलाकाई और दीगर बैन अलाक्वामी बहरानों में उलझा ना हो और ख़ुद सिक्योरिटी और सलामती के एतबार से जो मुस्तहकम और तवाना मुल्क हो। तो अब इन शरायत को अगर हम पेश नज़र रखें और फिर जो शंघाई ताउन तंजीम के बानी ममालिक हैं उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार अगर देखा जाए कि वो ईरान को इस तंजीम में रुकनियत देने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वाज़ह तौर पर इस्लामी जमहूरी ईरान की इलाकाई और आलमी हैसियत और उसकी पोजीशन समझ में आ जाती है। बहरहाल देखना यह है आज के इस प्रोग्राम में कि शंघाई ताउन तंजीम की अहमियत इस मरहले पर जब इस वक्त मगरिब और मशरिक एक बार फिर लगता है कि दो हिस्सों में तकसीम हुआ चाहते हैं और यूक्रेन का बहाना बनाकर मगरबी मुल्कों और अमेरिका ने रूस को घेरने की कोशिश की है, तो ऐसे में इस तंजीम की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर तर्ज निगार ज़फ़र आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ज़फ़र आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ पहुँच रही है ज़फ़र आगा साहब आप तक? जी, ऐसा लगता है कि ज़फ़र आगा साहब तक कि मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथी कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा रबता किया जाए और उनसे रबता बरकरार करने की कोशिश की जाए या बहाल करने की कोशिश की जाए। बहरहाल मैं गुफ्तगु यहाँ पर ये आपकी खिदमत में आराज पेश कर रहा था कि इस बार के इजलास में जो ताजिकिस्तान में और शंघाई ताउन तंजीम का उसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने और दूसरी तरफ जो ममालिक मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिका पाबंदियों का हथकंडा या हरबा अपनाए हुए हैं उनका मुकाबला कैसे किया जाए, इस पर खुलकर बहस हुई। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर बैरिस्टर ताहिर वास्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
ताहिर वासी साहब, शंघाई ताउन तंजीम जिसमें रूस, चीन और वस्ती एशिया के ममालिक और फिर ईरान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे ममालिक मुबसर की हैसियत से शरीक होते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी के हामिल मुल्कों की ये तंजीम और फिर दो बड़ी ताकतें इसमें शामिल हैं उन पर मुश्तमिल ये तंजीम कितनी अहमियत रखती है मौजूदा सूरत हाल में?
देखिए, 2001 से जब से ये तंजीम वजूद में आई है इसकी प्रोमिनेंस में इजाफा हुआ है, इसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन में इजाफा हुआ है और ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के खतूत पर काम कर रही है, फंडामेंटल राइट्स पे काम कर रही है और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पे इस वक्त एक्सट्रीमिज्म जो है वो किसी न किसी हवाले से नुकसान पहुँचा रहा है इसके मेम्बर्स को। काजिकस्तान है, रशिया है, चाइना है, जो आपने पांच ममालिक गिनवाए, काजिकस्तान है, किर्गिस्तान है और जो मुबसर ममालिक हैं मिसाल के तौर पे ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या जो सपोर्टर हैं मिसाल के तौर पे श्रीलंका है और मालदीप है, इन तमाम ममालिक ने जो ये मुश्तरका बनाई हुई है काउंसिल, इसका असर नफूज इंतहाई बढ़ रहा है और इसी वजह से इस इजलास में सबसे ज़्यादा इस बात पर बहस हो रही है और होगी और हुई कि किस तरह से इसके एक्सपेंशन में इजाफा किया जाए, किस तरह से ईरान को और बाकी ममालिक को जो इंटरेस्टेड हैं इसका मेंबर बनने में उनको मेंबर बनाया जाए, उनके इक्तसादी मामलात क्या होंगे, कानूनी मामलात क्या होंगे, इन पर बहस हो रही है और हो सकता है कि अगले इजलास में जो रशिया में होगा, ईरान को इसका मेंबर बना लिया जाए। और इसकी अहमियत इसलिए, जैसे कि आपने खुद फरमाया, कि इसमें रशिया और चाइना जैसी दो सुपर पावर शामिल हैं, और वो खुद इस एक्सट्रीमिज्म से न सिर्फ निमट रही हैं, बल्कि वो अमेरिका के एक्सट्रीमिज्म और वेस्ट के एक्सट्रीमिज्म से भी निमटना चाहती हैं, जो किसी ना किसी हवाले से इसको फैन कर रहा है, इसको फंड कर रहा है, इनके लोगों को हथियार मुहैया कर रहा है, और इनके लोगों को ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें मुहैया कर रहा है। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि ये तमाम लोग एक मुश्तरक लाए अमल पे काम कर रहे हैं, जिसमें यकीनन इक्तसादी तआवुन भी है, इकोनॉमिक तआवुन भी है, टेक्नोलॉजिकल तआवुन भी है, पॉलिटिकल तआवुन भी है, और साथ साथ जो अमेरिका और वेस्ट के जो हरबे हैं उनसे मुकाबला करने की भी बात हो रही है। जिस तरह से जब चाहता है सैंक्शंस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, इस वक्त ईरान के खिलाफ शदीद सैंक्शंस उन्होंने लगाई हैं, और पिछले इजलासों में ये बात होती रही कि जो ईरान के खिलाफ सैंक्शंस हैं उसकी वजह से मेंबरशिप नहीं हो सकती, और अब जो है रशिया के खिलाफ अपने इतनी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो अब रशिया भी इस बात में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है कि ये जो सैंक्शंस का हथियार है इसको भी इस मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया जाए और ऐसे लोगों को शामिल कर लिया जाए जिसमें वेस्ट में जो अपने तौर पर इनफरादी तौर पर उनको बस लगा दी गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका असर और नफूज बढ़ रहा है, और आगे जाकर ये काउंसिल जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और ये नेटो और ये जो दूसरी नाम नेहाद तंजीम है उनसे ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाएगी।
जी बहुत शुक्रिया ताहिर वासी साहब, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथियों ने इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की है, इस वक्त उसे देखते हैं, फिर आपकी खिदमत में और मेहमानों की खिदमत में हाजिर होते हैं।
शंघाई ताउन तंजीम का 14वां सरबराही इजलास ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में जुमे के रोज मुनाकिद हुआ। दोशंबा के नौरोज महल में मुनाकिद होने वाले सरबराही इजलास में रूस, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, इस्लामी जमहूरी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों ने हिस्सा लिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में तवानाई, मईशत, तजारती ताउन, सलामती और सियासी उमूर पर गौर किया गया। इस सरबराही इजलास में इस्लामी जमहूरी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मुबसर की हैसियत से शिरकत की। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में 10 करारदादों पर दस्तखत किए गए। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबा में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहों ने 10 मुआहदों पर दस्तखत किए, और इजलास के मंशूर में जिन मौजूदात का जिक्र किया गया है उनमें सन 2025 तक शंघाई ताउन तंजीम की तोसी, दहशत गर्दाना सरगर्मियों से मुकाबला, इकतसादी और समाजी और ट्रैफिक के शोबों में बाहमी ताउन शामिल हैं। दिफाई, सफारती और इकतसादी उमूर में बाहमी ताउन की गरज से सन 2001 में शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद रखी गई थी। इस्लामी जमहूरी ईरान के सदर ने इजलास में अपनी तकरीर के दौरान दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी से मुकाबले पर जोर दिया। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबा में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में ईरान के सदर ने हिस्सा लिया। डॉक्टर हसन रूहानी ने कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में दहशत गर्दी से मुकाबले पर जोर दिया है। सदर रूहानी ने इस सरबराही इजलास में दहशत गर्दी से मुकाबले में इस्लामी जमहूरी ईरान के ताउन का जिक्र करते हुए कहा कि दहशत गर्दी से मुकाबले के कुछ रास्ते हैं, जिनमें से एक इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए इक्तसादी और सकाफती गुर्बत को बाहमी ताउन से खत्म करने के लिए मंसूबों पर अमल करना है। सदर रूहानी ने कहा कि हमने गुज़श्ता इजलास में भी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और मनसूबा बंद तरीके से किए जाने वाले बैनुल अक्वामी जराइम का जिक्र किया था और इंतहा पसंदी के खतरात से आगाह किया था। इस्लामी जमहूरी ईरान के सदर ने कॉन्फ्रेंस के सरबराहों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक को भी इसी मसले का सामना है। सदर ममलकत ने जोर दिया कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की हिमायत आखिरकार पूरे इलाके के लिए खतरनाक होगी, और आज हम देख रहे हैं कि खूंखार दहशतगर्द शाम और इराक में क्या कर रहे हैं। सदर ममलकत ने कहा कि दुनिया को अमन सलामती की जरूरत है, और ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के साथ मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कलील मुद्दत के सियासी मफादात की तकमील के लिए दहशत गर्दों को मुसल्लह करने का नुकसान अब उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन्होंने उन्हें मुसल्लह किया था। सदर ईरान ने इसी तरह दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के सद्देबाब के लिए इलाकाई ताउन को जरूरी करार दिया। ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر کئی ملکوں کے سربراہوں اور اہم عہدیداروں سے ملاقات کی اور تہران واپسی کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اچھے اور خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار و صحافی ظفر آغا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ جی ظفر آغا صاحب، میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج؟
جی اللہ کا شکر ہے۔ ظفر آغا صاحب، بات ہو رہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم اور اس کے اجلاس کی۔
وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟
جی جی، 2001 کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس تنظیم کی اہمیت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جو بین الاقوامی پوزیشن ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس بار کے اجلاس میں جو معاملہ یا مسئلہ سب سے زیادہ حاوی رہا ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ اور مغرب اور امریکہ کی طرف سے یک طرفہ پابندیاں جو عائد کی جاتی ہیں دوسرے ملکوں پر، اس کا معاملہ سب سے زیادہ حاوی رہا ہے۔ آپ موجودہ صورتحال میں اس تنظیم کے سربراہی اجلاس میں ان دونوں موضوعات کو اٹھائے جانے کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟
اس سے قبل کہ یہ بحث کی جائے اور اس پر نگاہ ڈالی جائے کہ دہشت گردی کا مسئلے پر جو بات طے ہوئی، جو بحث رہی اس شنگھائی کانفرنس میں، اجلاس میں، ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ سوویت یونین کے زوال کے بعد سن 1990 کی دہائی میں یہ دنیا یونی پولر ورلڈ میں تبدیل ہو گئی، یعنی صرف ایک امریکہ کی امریکن سپر پاور بچی جس کی قیادت میں مغرب نے جو چاہا وہ مغرب کی، اور امریکن لیڈرشپ میں یہ کہا جائے کہ مغرب کی داداگیری قائم ہو گئی تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی، چونکہ کوئی سوویت یونین جیسی طاقت نہیں بچی تھی اس صورت، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ایک ہندوستان، مصر اور ایشیائی ملکوں کی جو ایک تنظیم ہوا کرتی تھی، نان الائن موومنٹ جس کو کہا کرتے تھے، جو اب بھی موجود تو ہے لیکن اس وہ تحریک بھی تقریباً بے اثر ہو کر رہ گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب کی داداگیری، مغرب اور امریکہ کی اکیلا سپر پاور بچا جو جس نے عراق، افغانستان جیسے واقعات جس کے سبب میں پیش آئے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو انٹرنیشنل بیلنس آف پاور جو تھا وہ ڈسٹرب ہوا، اور اس بیلنس آف پاور کو بدلنے کو پھر سے برقرار کرنے کے لیے شنگھائی کانفرنس کا انعقاد ہوا چین اور روس کی قیادت میں، پھر روس کے ساتھ دوسرے اور ملک جڑتے گئے، اور اب جیسا آپ فرما رہے تھے کہ ایران، ہندوستان، پاکستان، افغانستان جیسے ملکوں کو اس تنظیم میں جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جو ایک ویکیوم بن گیا تھا انٹرنیشنل بیلنس آف پاور میں، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے اس تنظیم کی قیادت ہوئی۔ اب جو اس وقت یہ شنگھائی کانفرنس وہاں جس کا اجلاس ہوا ابھی تازہ ترین 14th اجلاس، اس میں جو باتیں ڈسکس ہوئیں اور جس پر بحث ہوئی، جس میں جیسا آپ نے فرمایا اس میں سب سے اہم موضوع جو رہا وہ تھا دہشت گردی کا موضوع۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساری دنیا داعش جیسی تنظیم اس وقت سے جوجھ رہی ہے، پہلے القاعدہ تھا، پھر بوکو حرام کا نام ہم نے سنا، اور اب داعش جیسی تنظیم جس نے عراق کا بٹوارہ کر رکھا ہے، سیریا پہ قبضہ کر دیا ہے، خلافت کے نام پر اور اسلام کے نام کے اوپر بدترین وحشت اور دہشت کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ تنظیم۔ اس صورتحال میں یہ صرف عراق یا سیریا جیسے ملک کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک خطرہ پیدا بن چکی ہے، اور جو خبریں آئیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ناظرین بھی اس پروگرام کے واقف ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں مغرب کی اور سعودی عرب جیسے ممالک کی جو امریکہ کے الائز ہیں، اور حد یہ ہے کہ اسرائیل کی کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں۔ तो इस सूरत हाल में अब बहस की जरूरत दुनिया को यह हो गई है कि आया दहशतगर्दी का असल मरकज क्या है और उस दहशतगर्दी को किस तरह से रोका जा सकता है। वेस्ट कहने को वॉर ऑन टेरर करता है, अमेरिका की जानिब से वॉर ऑन टेरर होती है, लेकिन उसके नतीजे में होता क्या है, अफगानिस्तान और इराक जैसे मुल्क अमरीका के गुलाम हो जाते हैं। चुनांचे इस जो अमेरिकन पैराडाइम है वॉर ऑन टेरर का, उसके बाहर निकल के एक फिक्र की और एक सोचने की जरूरत है, वो फिक्र जो थी शंघाई कॉन्फ्रेंस में उभर कर बहुत वाजे तौर पर सामने आई और इस मसले पर इस मौजू पर भी अक्सर ममालिक के सदर और सरबराहान ने रोशनी डाली कि अगर दहशतगर्दी से निमटना है तो ये तय करना होगा कि इनको सऊदी अरब और वेस्ट जैसे मुल्कों की पुष्पनाही किस हद तक है और उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है, क्योंकि अगर अब आप इस बात पे बहस नहीं करेंगे तो दहशतगर्दी को से निपटा नहीं जा सकता और दहशतगर्दी सिर्फ चंद मुल्कों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए खतरा बनती चली जाएगी। दूसरी बात सैंक्शंस का मसला, सैंक्शन भी का इस्तेमाल अमेरिका ने सोवियत यूनियन के जवाल के बाद शुरू किया और ये एक हथियार है जो माशी तौर के ऊपर, जैसा आप वाकिफ हैं, नाजरीन वाकिफ हैं कि ये एक माशी हथियार है जिसके जरिए वो उन मुल्कों को निशाना बनाया जाता है जो अमेरिका की गुलामी के लिए राजी नहीं। इसका शिकार इराक हुआ एक ज़माने में, ईरान अभी तक सैंक्शंस का शिकार है, फिर इसी तरह आजकल आपने जैसा फरमाया और सब वाकिफ हैं कि यूक्रेन के नाम के ऊपर अमेरिका की यलगार सोवियत यूनियन के रशिया के खिलाफ है और पर है उनकी यलगार और उस रशिया के खिलाफ भी सैंक्शंस का, इकोनॉमिक सैंक्शंस का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनांचे अब दुनिया को ये तय करना है कि ये जो दो तरह की दहशतगर्दी है, एक खुली दहशतगर्दी जो इस्लाम के पर्दे में के नाम के ऊपर इस्लाम को बदनाम करने के लिए दाइश जैसी तंजीमें और अलकायदा जैसी और तालिबान जैसी तंजीमें जिसका इस्तेमाल कर रही हैं, उससे कैसे निपटा जाए, और दूसरी जानिब माशी दहशतगर्दी जो सीधी वेस्ट और जिसकी क़यादत अमेरिका कर रहा है, उस दहशतगर्दी को कैसे निपटा जाए। शंघाई कॉन्फ्रेंस की इस इजलास की अहमियत मैं समझता हूँ कि यही है कि आलमी सतह के ऊपर उन्होंने इन दोनों मौजुओं को ज़ेर बहस, न सिर्फ ज़ेर बहस रखा इस मसले को, इन दोनों मसाइल को, बल्कि इनसे निमटने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह से इनसे निपटा जाए, और आलमी बिरादरी को, मगरब के बाहर जो आलमी बिरादरी है उसको इस कॉन्फ्रेंस में और इस तंजीम के साथ जोड़कर इन आलमी मसाइल के साथ किस तरह से एक प्लेटफॉर्म और बड़ा वसी प्लेटफॉर्म बनाया जाए, इस पर बहस हुई शंघाई कॉन्फ्रेंस में। और चुनांचे ये जैसा आपने भी फरमाया कि इसमें अब कोशिश ये हो रही है कि ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे मुल्क जो अभी तक मुबसर और ऑब्जर्वर की हैसियत रखते हैं, उनको बाकायदा शंघाई कॉन्फ्रेंस की मेंबरशिप दी जाए ताकि ये और ये तंजीम और सरगर्म हो सके और इस तंजीम के ज़रिए जो वेस्ट ने एक फ्रंट खोला हुआ है टेररिज्म के खिलाफ के पीछे से आप उसकी इमदाद करें, हिमायत करें, मदद करें सऊदी अरब और इसराइल जैसे मुल्कों के पर्दे में, और दूसरी तरफ उसको कंडेम भी करें। इसके बाहर मगरबी तंजीमों और उनके इत्तेहादियों से निकल कर किस तरह से दहशतगर्दी और सैंक्शन जैसे मामलों को निपटा जाए, इस मामले को आलमी सतह पर मगरब के बाहर और मगरब के से हट कर एक नए प्लेटफॉर्म शंघाई कॉन्फ्रेंस जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए इनको निपटा जाए। इस पस मंजर में मैं समझता हूँ कि शंघाई कॉन्फ्रेंस इनका जो हालिया इजलास हुआ है वो इंतहाई अहमियत रखता
है। बहुत शुक्रिया आपका,
और उसके वो दुनिया के लिए बहुत जी बहुत मानी खेस
जी, बहुत शुक्रिया। वासी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कल ऐलान हुआ उसमें ये कि 2025 तक रफ्तार रफ्तार इस तंजीम में दीगर मुल्कों को भी शामिल किया जाएगा, ख़ासतौर पर जो मुबसर मुल्क हैं, और जब इनकी शरायत पर हम नज़र डालते हैं तो इस्लामी जमहूरिया ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसको शंघाई ताउन तंजीम का जो है रुकन बना लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम जो इस वक्त अपनी अहमियत दुनिया के सामने मनवा चुकी है, اس میں ہندوستان، پاکستان، ایران جیسے ممالک کی شمولیت کے بعد اس بلاک کو مغرب کی جو اقتصادی توسیع پسندی ہے روکنے میں کتنا اہم سمجھا جا سکتا ہے؟
بہت بہت ہی آپ کا پرٹیننٹ، بہت ہی خوبصورت سوال ہے، بہت علمی سوال ہے آپ کا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اس سے ویسٹ خوف زدہ بھی ہے، اسی وجہ سے جو اگر آپ ویسٹ کے اخبار کھنگالیں، کسی بھی اخبار کو دیکھ لیجئے، بلکہ بی بی سی اور سی این این کو دیکھ لیں، انہوں نے اس کو کور ہی نہیں کیا اتنا زیادہ، وہ اس کو اگنور کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اقتصادی طور پر جو انہوں نے، جیسا کہ پروفیسر صاحب لفظ استعمال کر رہے تھے، انہی سے مستعار لے کے میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتا ہوں، جو ویسٹ کی اقتصادی دادا گیری ہے اس کو یہ ممالک بہت آسانی سے چیلنج کر لیں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، جو کچھ میرا تجربہ اور علم ہے، کہ اگر یہ تنظیم میں ایران، پاکستان، بھارت اس کے ممبر بن جاتے ہیں اور جلد سے جلد اس کے ممبر بن جاتے ہیں اور اقتصادی تعاون کی بات ہوتی ہے، تو وہ سامان جو ہم پاکستان والے، بھارت والے یا ایران والے جو ویسٹ کو اتنی دور دراز بھیجتے ہیں سینکشنز کے باوجود، اور اس پہ لمٹس ہیں کہ کیا چیز کتنی بھیج سکتے ہیں، کیا چیز کتنی نہیں بھیج سکتے، اگر یہ سینکشنز ختم، اگر یہ تنظیم کامیاب ہو جائے تو ان سینکشنز کا جو یہ ویسٹ لگاتی ہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا ان ممالک میں، اور ان ممالک کی اقتصادی ترقی جو ہے وہ یورپ کی اقتصادی ترقی کو چیلنج کر سکے گی، اس کا مقابلہ کر سکے گی، اور یورپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ اس وقت یورپ میں اور برطانیہ میں خاص طور پر یہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کوئی چیز بناتے ہیں یہاں پر، یہاں پر صرف مینجمنٹ کرتے ہیں، یہاں پر صرف یہ ایک دلال کا کام کرتے ہیں، جس میں ایک چیز انڈیا سے لیتے ہیں اور ایک دوسرے ملک کو بیچتے ہیں اور درمیان میں اپنا نفع کرتے ہیں، نفع کماتے ہیں، اور اس میں بہت سارے جو لوپ ہولز ہیں سینکشنز کے ہیں اور لمٹس ہیں کہ کیا چیز کتنی دے سکتے ہیں، کیا چیز کتنی نہیں دے سکتے، لیکن اگر یہی تنظیم آپس میں اقتصادی تعاون بڑھاتی ہے، اور آپس میں اقتصادی تعاون کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چائنا پاکستان کو جتنا مرضی مال دے سکتا ہے، پاکستان چائنا میں، بھارت میں، ایران سے جو سپورٹ ہو سکتی ہے، رشیا میں خاص طور پر جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپس میں ہم لے دے سکتے ہیں، تو یہ یورپ کے مقابلے میں ایک بہت ہی منظم اور بہتر تنظیم ہوگی، اور یہ قطن ویسٹ کو نہیں بھائے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ اس میں ضرور خانہ اندازی کے لیے کوششیں ہوں گی، اس میں ان کے ممالک پر جو ہے زور ڈالا جائے گا کہ وہ اس میں جو ہے ان کے ممبر نہ بنیں، یا ان کی سہولیات یا ان کی دوسری چیزوں پر قدغن لگائی جائے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے، جیسا آپ نے فرمایا، کہ نہ صرف یہ کہ جیسا کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، ایک آلٹرنیٹ ویو دنیا کو سننے کو اور دیکھنے کو ملے گا سیاسی معاملات پر، یا جو ویسٹرن ویوز کی، جو پولیٹیکل ویوز کی یلغار ہے تمام دنیا پر، اس کے مقابلے میں ایک اور ویو جو ہے دنیا کو پولیٹیکل نظر آئے گا، بلکہ اقتصادی طور پر بھی یہ ممالک جو ہیں وہ بہت پرکشش ہوں گے اور اقتصادی ترقی انتہائی بڑھے گی، اور ویسٹ کی جو یہ دادا گیری ہے اس کو ختم ہوگی جلد سے جلد۔
بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں، رابطہ ہوا ہے پاکستان کی سینئر صحافی محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ سے۔ السلام علیکم محترمہ۔ فوزیہ شاہی صاحبہ، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی محترمہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کل جب روس کے صدر ولادیمیر پوتین شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں موجود تھے، سربراہی اجلاس میں، اور اس اجلاس کی اہمیت پوری دنیا کے سامنے واضح اور نمایاں تھی، اور یوکرین کے بحران پر وہ اپنا موقف بیان کر رہے تھے، عین اسی وقت امریکہ اور یورپی ملکوں کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جمعے سے ہی روس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم پر پریشر ڈالنا تھا، روس پر پریشر ڈالنا تھا، یا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے مغرب کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے مقابلے میں ہم اب بھی مضبوط ہیں؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب شنگھائی تعاون تنظیم کی بات ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا اجرا جو ہے اس وقت ہوا جب ایک واضح طور پہ جنگ جو ہے 9/11 کے بعد شروع ہو گئی تھی۔ 2001 میں شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، اور اس کا مجھے جو بنیادی طور پہ مقصد دکھائی دیتا ہے، اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ بہت خوبی کی بات یہ ہے کہ کل جو ہے گزشتہ روز اس کا 14th اجلاس تھا۔ پورے 14 سال میں ریگولر اس کی جس طرح میٹنگز ہو رہی ہیں، اس نے پوری دنیا کو، بلکہ خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں مغرب کی تو اس کو الرٹ کر دیا ہے इसके अगर कोई भी तंजीम जो इतने तवातुर से मिलती है, इतने अपने तवातुर से अपने एजेंडे की तकमील करती है, तो वो हमेशा चैलेंज का बाइस बनती है।
जी।
और शंघाई तावन तंजीम ने वाजे तौर पे एक चैलेंज जो है वो कबूल किया है। और मैं ये समझती हूँ, जिस तरह भी पहले आपके मुकर्ररीन बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैं चूंकि मुकम्मल तौर पर इनकी गुफ्तगू से इतफाक करती हूँ कि इस वक्त वाजे तौर पर एक तकसीम हो चुकी है और वो आपकी मगरिब और मशरक की है। और मगरिब और मशरक में, मगरिब को भी बिल्कुल इल्म है कि जहाँ तक वसाइल का ताल्लुक है वो मशरक में है। अगर हम पोटेंशियल किसी भी हवाले से बात करते हैं, चाहे वो हम कुदरती दौलत से बात करें, चाहे हम मैन पावर की बात करें, या किसी भी हवाले से, जो इस वक्त चूंकि दौड़ जो है वो आपकी इक्तसादी दौड़ है और हर मुल्क अपने आप को अपनी बका के लिए वो एक तसलसल के साथ अपनी इक्तसादी गेंस की तरफ जा रहा है। अब मगरिब जो है वो वाजे तौर पर इस सूरत हाल से वाकिफ है और वो ये समझता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज उसके लिए साबित होगा। यहाँ एक और हमें बिल्कुल पहलू जो है मद्देनजर रखना चाहिए कि ये ममालिक जिसमें चीन शामिल है, जिसमें रूस शामिल है, या दीगर ममालिक भी जो सेंट्रल एशिया से ताल्लुक रखते हैं, इसके अलावा जो ज़ाहिर है मुबसरीन ममालिक हैं, ये वो ममालिक हैं कि जिनमें अगर ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा, एक तो पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ सतह पर मुतासिर भी होते रहे, चाहे सोवियत यूनियन का इनदाम हुआ था, जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मुल्क जो है वो मुतासिर हुआ था, फिर चीन जो है जिस तरह वो एक आगे बढ़ रहा है, तो ये वो ममालिक हैं कि जो समझते हैं कि उनको चैलेंजेस हैं। शंघाई के हवाले से, तावन तंजीम के हवाले से बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन मैं सबसे अहम उसकी बात जो समझ रही हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि ये ममालिक इन्होंने आपस में एक अहद किया है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, खास तौर पर जो आपस में उनका एतमाद है, उनका जो जाहिर है कि ममालिक के दरमियान एतमाद और खास तौर पर दिफा के हवाले से जिसकी जानिब ये आगे बढ़ रहे हैं, ये इस इलाके में और इस खत्ते में ना सिर्फ अमन के हवाले से बहुत अहम साबित होगा, बल्कि आने वाले वक्त में हम ये देखते हैं कि अगर तरक्की जो इक्तसादी तरक्की है, इसमें अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम तीन ममालिक का भी जिक्र करें, जाहिर है कि भारत एक बहुत बड़ी कुव्वत है, इसके अलावा चीन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, रूस खुद अभी बहुत बड़ी कुव्वत है, सेंट्रल एशिया के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का देखा जाए या कुछ देखा जाए वो भी एक ताकत रखते हैं, ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है जिसने बिल्कुल वाजे किया है कि सेंक्शन के बावजूद, या मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि एक थ्रिल से कि सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने अपनी खुद मुख्तारी को, अपनी पहचान को जिस तरह मनवाया है, इसको मेरे ख्याल में अगर दुनिया में देखा जाए तो बहुत कम मिसाल मिलती है। और मैं समझती हूँ कि वो कुव्वत जो है बहुत ताकतवर होती है जो एक पूरी दुनिया से टक्कर लेती है। और
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू मेहमानों से जारी, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो ज़फ़र आगा साहब की खिदमत में। ज़फ़र आगा साहब, अभी एफोज़ा साहिबा कह रही थी और आपने भी इशारतन इशारा किया उस जानिब के, एक बार फिर अब दुनिया जो है वो चंद कुतबी निज़ाम की शक्ल में मारज़ वजूद में आ रही है। 1990 के बाद अगरचे अमरीका ये समझ जाता है कि वो अकेला जो है वह दारोगा है दुनिया का, तो अब फ़र्ज़ अगर कर लिया जाए कि दुनिया एक बार फिर मशरक़ और मगरिब में तकसीम हो रही है, ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, मगरिब और मशरक़ में तकसीम हो रही है, तो आप उस मशरक़ में और आज के मशरक़ में कितना फ़र्क महसूस करें, यानी उस मशरक़ से मुराद जो सर ज़माने का मशरक़ था। सफ़र आगा साहब,
देखिए बड़ा फ़र्क बहुत पैदा हो चुका है उस वक्त के मशरक में और आज के मशरक में, जैसा आप फरमा रहे थे। उस वक्त चाइना की कोई हैसियत नहीं थी, हिंदुस्तान एक मामूली मॉरल अथॉरिटी हिंदुस्तान की दुनिया में जवाहरलाल के वक्त और इंदिरा गांधी के वक्त में बहुत बड़ी रही, लेकिन सही मानों में माशी एतबार से हिंदुस्तान की एक पिछड़ा हुआ मुल्क था। ये तमाम एशिया के ज़्यादातर इकॉनमी मुल्क ममालिक जो हैं वो अंडर डेवलप्ड मुल्क कहलाते थे। आज आप अगर एशिया पे निगाह डालें तो चीन कुछ बरसों में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी और मैशियत होने जा रहा है। हिंदुस्तान एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी की हैसियत में आ रहा है, जापान है, इसी तरह छोटे छोटे मुल्क सिंगापुर, कोरिया, वियतनाम जैसे मुल्क अब बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ईरान वेस्ट एशिया में मशरक़ वस्ता के पे अगर आप निगाह डालें तो ईरान आज से 20-25 बरसों में वेस्ट एशिया की एक सुपर पावर, उस खत्ते की एक सुपर पावर की हैसियत में इमर्ज करके कर रहा है। इकोनॉमिक तरक्की ईरान की, साइंटिफिक डेवलपमेंट ईरान का, उनकी मैन पावर और उनकी जो कुव्वत इरादी है तरक्की करने की, जिसको कोई दुनिया में तमाम तर रुकावटों के बावजूद जिसको कोई नहीं रोक पा रहा है, वो अपनी जगह पे इस बात का सबूत है कि ईरान को आगे बढ़ने से मगरिब क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही हाल हिंदुस्तान का है, यही हाल चीन का है, यही हाल जापान का है, यही हाल कोरिया का। तो इन तमाम ये तमाम माशियतें तरक्की अब कमोबेश तरक्की याफ्ता मुल्क से कम्पीट कर रही। चीन के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की ग्लोबल इंडस्ट्री है, सारी दुनिया का प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन हाउस है चीन। ऐसी सूरत हाल में अगर ये ताकतें एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर, शंघाई कॉन्फ्रेंस जैसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होती हैं, तो मगरिब के लिए ये बहुत संगीन चैलेंज का सामना होगा, जिसको मगरिब को फेस करना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। वही मैं बात कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये कोई बड़ा अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन ये जो सूरत हाल है दुनिया की, वो उसको सही मानों में यही लफ्ज ही अदा कर पाता है। यानी जो मगरिब की इंटरनेशनल अफेयर्स में दादागिरी है कि आप जब चाहिए अफगानिस्तान में चले जाइए, जिस वक्त चाहिए आप इराक में दाखिल हो जाइए, जब चाहिए आप दाइश को बना दीजिए, और फिर अगर आपको लगे कि ये आपको कहीं नुकसान पहुंचा रही है तो उसके कहिए कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स नहीं बचे हैं इस यूनिपोलर वर्ल्ड में, जिसमें मगरिब की कि जो मगरिब जो चाह रहा है वो कर रहा है। इस बात पर न सिर्फ रुकावट होगी, बल्कि ये जो नए नॉर्म्स इंटरनेशनल रिलेशंस में बनाए हैं मगरिब ने, ये यकीनन इन पे पाबंदियां लग जाएंगी। आज जिस तरह से सैंक्शंस लगते हैं, अगर मशरक एक बार इकट्ठा हो जाता है, आज का मशरक जो माशी तौर के ऊपर अपने अपने पैरों पे खड़े होने की तमाम तर कुव्वत रखता है, तो मगरिब के सैंक्शंस के मानी क्या रह जाएंगे? या मशरक अगर ये तय कर लेता है कि अमेरिका या नाटो की फौज फलाने इस खत्ते में नहीं जा सकती, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि मगरिब जब चाहे अपनी फौजें जिस खत्ते में जिस तरह से आज पहुंचा रहा है वो पहुंचा सके। मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस वक्त का मशरक और आज के मशरक में जमीन और आसमान का फर्क।
बहुत शुक्रिया आपका ज़फर आगा साहब, बहुत शुक्रिया की है कि ये बहुत शुक्रिया ज़फर आगा साहब, वक्त हमारा बहुत ही कम रह गया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। ताहिर वासी साहब, मुख्तसर जवाब चाहूँगा, उसके बाद फौजदार शाही साहिबा से भी अगर वक्त रहा तो एक सवाल करना चाहूँगा कि कल जब दुशंबा में ताजिकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात हो रही थी, और वो ममालिक बात कर रहे थे जो दहशतगर्दी के सही मानों में ख़िलाफ़ और मुखालिफ हैं और खुली तलवार हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो वहाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर इत्तेहाद की बात हो रही थी, और एक इजलास से एक दिन पहले जद्दा में हुआ जहाँ पर वो ममालिक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात कर रहे थे जिन्होंने ख़ुद दहशतगर्दों को परवान चढ़ाया, दहशतगर्द ग्रोहों को तश्कील दिया, और आज भी वो दहशतगर्द ग्रोहों को साजो सामान और असलाह और माली इमदाद हर तरह से उनकी हमायत कर रहे हैं। तो इन दोनों जगहों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होने वाले बयानात और इजलास पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे?
मुख्तसर मैं ये अर्ज़ करूँगा, चूँकि आपके सवाल में आपका जवाब मौजूद है, मुख्तसर ये अर्ज़ करूँगा कि जो दुशंबा के इजलास में लोग बात कर रहे थे, ये वो लोग थे जो ख़ुद किसी ना किसी तौर से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, वेस्ट की दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं और इतहा पसंदी का दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। कोई भी इन ममालिक में ऐसा मुल्क नहीं था जो ख़ुद किसी ना किसी हवाले से वेस्ट की दहशतगर्दी का शिकार ना रहा हो, चाहे वो इकतसादी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इंतहा पसंदी का हो। और जद्दा में जो इजलास हो रहा था वो ममालिक का इजलास था जो दहशतगर्दी दुनिया में फैला रहे हैं, और उन ममालिक में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जो किसी ना किसी हवाले से दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी ना कर रहा हो। तो ये बड़ा बुनियादी फ़र्क है। वहाँ पर वो लोग मिलकर सर जोड़कर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे जो दहशतगर्दी को फंड करते हैं, जो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाते हैं, जो अमेरिका के कहने से दुनिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और दुशंबा में जो लोग बात कर रहे थे वो लोग थे जो दहशतगर्दी का शिकार हैं। तो जाहिर है जो लोग दहशतगर्दी का शिकार हैं उनके पास डिटर्मिनेशन है, उनके पास इसमें लड़ने के लिए स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, और सिंसियर और पुरखलूस हैं कि वो अपने अपने ममालिक को इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से किस तरह बचाएं। और ख़ास तौर पर मैं अपनी बात सदर रूहानी के इस खूबसूरत बयान पर ख़त्म करता हूं, जो उन्होंने कहा कि इस दहशतगर्दी को, एक्सट्रीमिज्म को एयर स्ट्राइक से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये इतना मानी खेज बयान है कि अगर वेस्ट और अमरीका के इतिहादी इसको समझ लें तो इसमें बहुत सारी पिन्हा बातें हैं, वो इसको निकाल लेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। फौजिया शाही साहबा, हमारे पास 2.5 मिनट का वक्त बचा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आइंदा 2025 तक जब इस तंजीम की तौसी की बात की जा रही है, इसके मुस्तकबिल को आप कैसा देख रही हैं और मगरिब के मुकाबले में इसकी जोग्राफिया, इसकी सियासी और इसकी माशी हैसियत पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे?
देखिए, बहुत यकीनन वक्त बहुत कम है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये तंजीम जो है ये आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल में है कि बिल्कुल एक क्योंकि एम के साथ जा रही है। मुझे तो इसका फ्यूचर बहुत हमेशा से ब्राइट रहा है। मैं शंघाई तंजीम की हमेशा से बहुत उसकी फॉलोअर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि उसका एजेंडा जो है मुझे बहुत पसंद रहा है। एक तो बात यह है कि बिल्कुल अगर हम ये ऐड कर ले, अगर मशरक ये ऐड कर लेता है कि वो उसने खाम माल नहीं देना, तो आप यकीन करें कि मगरब का किसी जगह कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अगर ये मशरक ये ऐड कर लेता है कि उसने मगरिब की फोर्सेस को, उनकी किसी तरह की भी जो वसाइल है उनको नहीं करना, बल्कि आपस में एक बेहतर मजबूत रहोगे चलना है, तो आप यकीन करें, ये मैं बिल्कुल वसूख से कह सकती हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की हुई है कि कितने वसाइल जो है यहाँ है और कितने यहाँ के अवाम के लिए कितनी बेहतरी हो सकती है, इलाके के लिए कितनी बेहतरी हो सकती है। और दूसरा, ये जो एक थानेदारी वाला सिस्टम है, जिस तरह भी आपने पहले बात की थी कि रूस के खिलाफ एकदम जो है सेंक्शंस की बात आती है, फलां आता है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। तंजीम को जो है बिल्कुल इसी जिस एम के साथ आगे ये बढ़ रही है, जो 14 साल से ये आगे चलती जा रही है, मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में इसमें मजीद इजाफा होगा। खास तौर पे मुझे इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो इसी खत्ते में स्ट्रांग दिखाई देती है और इसमें डेवलपमेंट के जो इम्कान है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तंजीम वो है कि मैं जो जाहिर नॉन अलाइन मूवमेंट की बात अभी की गई है, उसको एक सियासत का रंग दे दिया गया था और उसमें वो ममालिक थे, ये किसी ब्लॉक की तरफ होते थे लेकिन वो अपने आप को नॉन अलाइन कहते थे। लेकिन अब ये आप किसी इसकी वाबस्तगी के अलावा अपनी एक उसकी लगन के, अपनी ज़रूरत के, अपने इलाके की तरक्की, अपने ये कह लें कि खत्ते की तरक्की के लिए आप इकट्ठे हो रहे हैं। अब आप ये नहीं कर रहे कि आपने किसी की एक की मुखालफत करनी है तो दूसरे की हमायत करनी है, अब आप अमन के क्याम के लिए, आप दहशतगर्दी के खिलाफ एक खुद इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये वो ममालिक है, मैं ये समझती हूँ कि अगर माजी में भी देखा जाए, अगर पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को देखा जाता है तो एक यकीनन बहुत किस्मत हमेशा रहे हैं, तो ये ताल्लुकात मुझे बाकी ममालिक के साथ भी आगे बढ़ते हुए और एक बेहतर सिमत में दिखाई देते हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र आगा साहब, ताहिर वासी साहब और फौजिया शाही साहबा, आप तीनों मोज़ज़ मेहमानों के हम शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगु मुलाहिज़ा फरमाई। जाहिर है कि इस कदर तंग कर रखा है मगरिब और अमेरिका ने, एक मिग्रेन जैसा माहौल पैदा कर रखा है ख़ासतौर पर मशरक़ी मुल्कों के लिए, वहाँ के आवाम के लिए, तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि शंघाई जैसे जो तंजीम है ये खुलकर सामने आए और जो अपनी पोटेंशियल है, जो अपनी इस्तेदाद है, जो अपनी तवानाइयां हैं, अपने अवाम के फलाह व बहबूद के लिए उसको बरवकाल लाएँ और अपने पैरों पर खड़े रहें, ताकि ये मगरिब और ये अमेरिका पाबंदियों के हथकंडे से, जो कि सदर रूहानी साहब ने कहा कि एक मोहलिक हरबा और हथकंडा बना रखा है अमरीका और मगरिब ने, इससे अपने आवाम को वो नजात दिला सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासिस भी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।